अगली सूरत ममता है ना, इम्तिहानों से भरी हुई सूरत। रिश्तों के इम्तिहान क्या हैं, कैसे हैं, आइए इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए और मेरी रजा जोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम इनकी तरफ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आए इसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। और इनकी रविश यह है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छुपा कर इनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो तुम ऐलानियां करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूं। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे, वो यकीनन राह रास्ते से भटक गया। इनका रवैया तो यह है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ दुश्मनी करें। क्यामत के दिन तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम ना आएंगी, ना तुम्हारी औलाद। अरबी की भी आयत पढ़ लीजिए, तर्जमा सामने आपके, कोई लफ्ज को एक को भी आगे से पीछे करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये बता दिया, लई तनफाउकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम। कौन सी रिश्तेदारियां और कौन सी औलादें जो अल्लाह के तकाजों से हमें हटा लें, हमारी जिम्मेदारियों से हमें दूर कर दें। हम अपनी जाती मजबूरियों को बुनियाद बनाकर इस समय काम छोड़ दें। इस रोज अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। हातिम बिन अबी बलता बद्री साहबी थे, अल्लाह के नबी के साथ जंग में जिहाद कर चुके थे, अल्लाह ने खुशखबरियां दी थी। उसके बाद फतेह मक्का का मौका आया, सन 8 हिजरी में। मक्का वालों ने कमिटमेंट करके तोड़ी थी, अहद शिकनी की थी, कहले सीधी सी बात है, उम्मीद दिलाकर काम ना किया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से एक दुआ की कि अल्लाह मैं मक्का पे हमला करूंगा, पर मेरे इस आने को छुपा लेना। वजह, पहले से उनको पता चल गया वो बहुत तैयारी करेंगे तो मक्का में खून खराबा होगा, हरम की तौहीन होगी। मैं चुपके से जाना चाहता हूं ताकि उनको उम्मीद ना हो, तो बगैर जंग लड़ाई के मक्का फतह हो जाए। ये एक छोटा सा वाकया था, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है। आप देखिए कि नबी सल्लम ने चुपके से तैयारी का काम किया, करीबी साथियों को पता था, हर बात का पता होता है जो लोग करीबी होते हैं। हुक्म क्या था कि चुप। एक सहाबी, उन्होंने खत लिखा मक्का के सरदारों की तरफ और उनको पैगाम दिया, अल्लाह के नबी लश्कर लेकर आ रहे हैं, बच जाओ, और मैं ये खत लिख के तुम पर एक एहसान कर रहा हूं ना, तो इसके बदले में तुम मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कहना। बीवी बच्चों की मोहब्बत दीनी राज को अफशा करने का जरिया बनी, ये है रिश्तों का जिहाद। दीन और दुनिया के तकाजे साथ हों तो किधर पलड़ा झुकता है, ये है मेरा अल्लाह के यहां मुकाम, ये है मेरे दर्जे, ये है साबिकून अलव्वलून या असहाबुल जमीन। जितना मर्जी बंदा खुश करे दूसरे तकाजों को, फिर साबिकून अलव्वलून नहीं बनेंगे। खैर, अब वो तो चुपके से काम कर रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं। अल्लाह के नबी को वही के जरिए की आयतें भेज दी गई। आपने कहा खातिब को बुलाओ, बुलाया गया। खातिब तूने क्या किया, कुछ किया, क्या किया? खत भेजा और खत भी निकल आया। अल्लाह के नबी ने हजरत अली के साथ दो लोगों को भेजा, कहा जाओ मक्का से मदीना के रोड पे जाओ, ये कहा रोजे खाका पे तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसको लेकर आओ, उसके पास खत है। हजरत अली ने और साथियों ने घोड़े पे अड़ लगाए चल पड़े। जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा जरा आहिस्ता चलाओ, शायद कहीं पहले ही मिल जाए वो। हजरत अली ने कहा अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के नबी रोजे खाक का नाम नबी ने लिया तो वो औरत मुझे वहीं मिलेगी। ये ईमान लाइए। देखिए हजरत अली की एक बात जहां है आज भी पारे में दूसरी भी आई है ना, हमने इन पे बात नहीं की कोई। बड़े प्यारे अल्लाह के नबी के साथी थे। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था अली कल आना, ये बात तुझे कल बताऊंगा। घर जाके बीवी को कहते हैं फातिमा अल्लाह की कसम मैं कल से पहले नहीं मर सकता, वैसे तो मौत कभी भी आ सकती। कहा आप कैसे कह सकते हैं कल से पहले मैं नहीं मरूंगा, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कहा इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कल आना और मैं बताऊंगा, तो फिर कल तक तो मैं जी रहा हूं। नबी के लफ्जों पे भी चले, नबी के नक्शे कदम पे चले। और वाकई ये हुआ, जब वहां गए तो एक औरत दिख रही है, कहा रुक किधर जा रही है, कहा बस जब गरीब औरत तू मांगने तांगने वाली हो, सारा नाम था उसका। कहा तेरे पास कोई खत है? कहा कोई नहीं है। कहने कि सीधी तरह दे दे, नहीं तो तेरी तलाशी लेंगे। जरा सा डराया, बालों के अंदर यूं मिट्टियों में रोया व खत निकाल के दे दिया। खत वही था, मेन खाते बिन अभी बलता इला कुफार, जो भी उनके सरदार थे। अब जुर्म सामने है, मुजरिम सामने है। और वो औरत कौन थी आपको पता? गजवे बदर में जब 70 सरदार मारे गए, अबू जाहल और फुलां फुलां फुलां, तो ये औरत नबी सल्लम के पास आई, कहने लगी मक्का में थी, तवायफ थी, आपने तो सारे सरदारों को ही मार दिया, तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया, यानी अब मेरी तो कोई किसी को जरूरत नहीं रही, तो मैं मुहाजरा हूं, मुझे मदीना में रहने दें। देखिए अल्लाह के नबी का दिल साफ देख रहे होते थे कई चीजों को, लेकिन कहते चलो रह लो। लेकिन असल में वह जासूसा थी, ऐसे इधर की खबरें उधर लेके जाती थी, इधर के राज उधर, उधर के इधर, पैसे खाती और लोगों से लेती। अल्लाह ऐसे दोगलेपन से बचाए। और यही हुआ, जब खत आया, कहा बोल खातिब अभी क्या है? हजरत उमर जैसा बंदा कहाँ चुप रहे? अल्लाह के नबी मुझे इजाजत है मैं खातिब की गर्दन काट दूं। उमर नहीं अभी नहीं, सबर, आपको नहीं पता ये बदरी है। खातिब तू बोल सुना क्या किया। कहा अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम, ना तो मैं मुर्तद हुआ हूं, ना मेरे दिल में से इस्लाम गया है, मेरा ईमान है कि जब आप जा रहे हैं लेकर फौज, जीतेंगे आप ही। इतना उनको यकीन था कि अल्लाह हक को गालिब करता है। मैंने तो सिर्फ ये खत लिख कर उन पर एक एहसान क्यों किया है, क्योंकि बाकी सब के रिश्तेदार बाकी लोग भी उधर हैं, मेरा वहां कोई नहीं सिवाय मेरे बीवी बच्चे जो मक्का में फंसे हुए हैं। उनकी मोहब्बत में ये फैसला कर चुका कि चलो मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, जाहिर जब जंग लगनी है तो दोनों तरफ से फतेह आनी है। अल्लाह ने ये सारा मैसेज दिया कि ये औलादें और माल काम नहीं आएंगे। अब इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, हम खुद समझते हैं कहां हमें हमारे बच्चे और उनके बातें। और मैं कहती हूं इतने छोटे मुतालबे हमारी औलाद के और हमारे माल के और हमारे घरों के, इतने बड़े मकसद से पीछे कर देते हैं हमें, ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई। बाकी तो वो लोग हैं ना जो है ही दूर, उनको तो ना छेड़े बंदा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी तरजीहात को मुतय्यन कर दे। अब आगे, फिर आगे हैं वो जिनका जिक्र हमेशा आता है, कौन? कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम। ये जिंदगी बसर करवा अल्लाह हमसे, कोई पैगाम ही नहीं पूरा होता इब्राहिम की मिसालों के बगैर। अब यहाँ रिश्तों का जंग है ना, आप देखिए हजरत इब्राहिम का भी जहां भी जिक्र आया ना अलग सिनेरियो में आया। अब यहाँ ये खातिब के वाके और ये इस सूरत का जो थीम है रिश्तों का जिहाद, उसी पे आ रहा है, सुनिएगा। तुम लोगों के लिए इब्राहिम और इनके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया, हम तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो कतई बेजार हैं। जरा सोचिए ये जुमला, हम अपने खानदान से ये बेजारी का जुमला बोल सकते हैं कि हम तुमसे और तुम्हारी इन बेकार रसूमात से बेजार हैं, तुम्हारे बेतुके फैशनों से बेजार हैं। आप देखिए ये बात कहना, सौ नहीं हजार दफा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ने से मुश्किल है, लेकिन अल्लाह कह रहे लकद कान लकुम फी उस्वतुन हसना, मानना तो पड़ेगा। और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया। देखिए रिश्ते काट रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, कल तुमने इतना पढ़ा सिला रहमी पे, कतर रहमी तो इतना बड़ा गुना है, तो क्या हजरत इब्राहिम रिश्ते काट रहे हैं? खुदा खौफी नहीं है इनको? आज लोग कहते देखो दीन पढ़ के रिश्ते काटते हैं, अब तो इनको कोई पहले तो चलो कुछ चार खानदान के 10-20 लोग मिल जाते थे, खुश हो लेते थे, ईद की पार्टियां सजती थी, महफिलें होती थी, ये क्या नया कुरान पढ़ आई है। कहा नहीं, एक बाउंड कर रहा हूं तुम्हें किस चीज से, जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ। तो याद रखिए ला तअली मखलूक फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके बंदों को तो नहीं राजी करता जिसको पता भी चल जाए कि अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, और अल-मुमिन अल-मुहैमिन अल-मुतकब्बिर, उसके नामों को सोचिए और फिर देखिए अपने से जरा से ऊंचे नीचे कद के बंदे से डर रहे होते हैं और अल्लाह अकबर से नहीं डर रहा होता इंसान। असल दीन ये है जिसका इजहार दिन में 5 वक्त की नमाज, साल के 30 रोजों और 2.5% ज़कात से हम देते हैं। अगर ये नहीं है तो ये सब छिलका है ऊपर का, अल्लाह हम पे रहम करते। मगर इब्राहिम का अपने बाप से ये कहना इससे मुस्तस्ना है कि मैं आपके लिए मगफरत की दरख्वास्त जरूर करूंगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल करना मेरे बस में नहीं। देखिए अकीदा इब्राहिम का, पहुंचे हुए थे, बुजुर्ग थे ना, नेक थे, पर कह रहे मुझे नहीं पता कि मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ कबूल करा सकता हूं कि नहीं। और इब्राहिम और असहाबे इब्राहिम की ये दुआ थी, ए हमारे रब तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ हमने रजू कर लिया और तेरे ही हजूर हमें पलटना है। ए हमारे रब हमें काफिरों के लिए फितना न बना और ए हमारे रब हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा। बेशक तू ही जबरदस्त और दाता है, तू ही जबरदस्त और दाना है। ये आज की दूसरी दुआ है। आप कहते हैं आज के बारे में चार दुआएं हैं और एक से एक बढ़ के खूबसूरत। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजलना फितनत लिल्लज़ीन कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला हमें भी इस दुआ पे अमल वाला बना दे। इन्हीं लोगों के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए और हर उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोज़े आखिर का उम्मीदवार हो। इससे कोई मुनहरिफ हो तो बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महमूद है। तो क्या जुरत सिखाई जा रही है। बईद नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान मोहब्बत डाल दे जिनसे तुमने आज दुश्मनी मोल ली है। इसको हाईलाइट करें। याद रखिए आप अपने किसी प्यारे को अगर अल्लाह के लिए नाराज करते हैं ना तो ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ये आपको अल्लाह ने इस आयत में लिखा नंबर नोट कर लें। एक दफा नो कह दे जुरत से, गलत नहीं मानूंगी। लोग क्या कहते हैं, दामाद है उसकी बात नहीं मोड़ सकती, बेटी की होने वाली सास है उसकी बात नहीं मोड़ सकती, अपना खानदान है उसको नहीं मोड़ सकती। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम आज इस बात से डर रहे हो ना कि ये नाराज हो जाएंगे, तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जरूर अल्लाह उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डालेगा और इसको जिसने आजमाया वो इसकी तस्दीक करेगा। आप सच बोले वक्ती तौर पर लोग माइंड करेंगे, फिर बाद में कहेंगे आपके सच ने मुझे आपके करीब किया कि आप कभी गलत को सही नहीं कहती या आप गलत फेवर नहीं लेती। अगर मैंने गलत किया था उस वक्त आपने मुझे टोका था, मुझे बड़ा बुरा लगा था, पर आज मैं शुक्र करती हूँ कि उसी बात की वजह से मैं जुड़ी रही और मैं दीन में आगे निकल गई। आप अपने बच्चों के प्रेशर में ना आया करें। बच्चा जरा सर होता है, पाँव मसलता है, अच्छा अच्छा चॉकलेट ले लो, नहीं दूंगी नहीं दूंगी, खबरदार बात ना करना, नहीं दूंगी फोन, जरा सा चीखे, अच्छा जाओ ले लो पैसे पड़े, जाओ ले लो नया फोन। डोंट बी प्रेशराइज्ड। बच्चों से, रिश्तों से, और मैं कहती हूँ हम अपनों से छोटों से दब जाते हैं, अपने बड़ों की परवाह भी नहीं करते और सबसे बड़े की तो बहुत ही कम करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम इन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करें। देखिए कितने प्यारे तरीके से ये पारा आपको मुझे रिलेशनशिप सिखा रहा है। रिलेशन मैनेजमेंट इसको कहते हैं। शौहर को भी पता है कि इसने मेरी क्या माननी और क्या नहीं माननी। बच्चे को भी पता है अम्मा ने ये मानना ये नहीं मानना। सर पटकूंगा पांव पटकूंगा, मेरी माँ ने मेरी गलत नहीं मानी। ये तरबियत देकर अपने बच्चों को बड़ा करें। सिर्फ शुरू के 3 साल, मैं कसम नहीं खाना चाहती, जिन माओ ने 3 साल में अपने बच्चों को ये रियलाइज करा दिया, भूखे सो जाओ घर छोड़ जाओ पांव पटको मैंने तुम्हारी गलत नहीं मानी, सिर्फ 3 साल की एज तक जब शौर शुरू होता है, वल्ला ही सारी जिंदगी आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। उम्मीद ही नहीं रखते। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ उन्होंने नहीं खाना ना तो नहीं खाना, अब शुरू में खा लेना प्लीज खा ले, मेरी खुशी के लिए खा ले, मैं कहती हूँ फलां की खुशी पे नहीं खाना, पता लग गया साल डेढ़ में इस बंदे ने नहीं मानना तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद ढीले बन के लोगों को कहते हैं अच्छा कभी मान लूंगी कभी नहीं, कहते हैं बात नहीं करूंगी और अगले ही सेकेंड मिनट अगले मिनट में ही हम उससे बात कर रहे होते हैं। कहे ना बच्चे को नहीं बोलना, नहीं बोलूंगी तो फिर जितना कहे उतनी देर ना बोले, नहीं पकाऊंगी रोटी तेरे लिए फिर ना पकाए, फिर मिन्नत ना करे चल खा लेना, माँ के दिल को कुछ हो रहा है तो माँ की अंतड़ियां सुकड़ रही हैं, नहीं फिर सब्र तो कीजिए। मैं कहती हूँ जितना मुश्किल काम तरबियत करना, ये कोई मुझसे पूछे, मैं आपको सच बताती हूँ अपने ऊपर लेकर, आप मुझे 6 घंटे पढ़वा लें, अल्लाह के हुक्म से ये 3 घंटे का पा रहा है ना, सिर्फ मुझे 20-25 मिनट का स्ट्रेच दे के यार आप यहां से उठाएं किसी दूसरी जगह ले जाएं, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मैं फिर वहां 2-2.5 घंटे बोल सकती हूँ। बट जो चीज मुझे थकाती, जो मुझे खपाती और जो मुझे रुलाती है रातों को, मुझे लोगों की तरबियत करना मुश्किल लगता है, मैं खफ जाती हूँ। मैंने कहती हूँ मुझे माफ करें, अपने मामले खुद संभालें, मुझे ना मीटिंगों में बुलाएं, ना मुझसे लंबे चौड़े काम लें, मुझे पढ़ाने दें, मुझे इसमें मजा आता है, उसमें मैं थकती हूँ। 1 घंटे की मीटिंग में बाद में अटेंड करती हूँ, मैं उस दिन जाके लेट जाती हूँ और जिसमें मैं यहाँ इससे भी ज्यादा बोल दूं मैं नहीं थकती, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये एनर्जी देता है। तो मानिए कि बच्चों की तरबियत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, मैं उन माओं को बहुत एडमायर करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। यकीन करें इंतहाई मुश्किल है, और आज के दौर में तो और भी मुश्किल हो गया, सारा मुआशरा ही तो बच्चों को बिगाड़ रहा है। अब आप अपने को बनाएंगे भी ना तो जाके उन्हें कहना मेरी दोस्त की अम्मी तो ये कहती हैं और मेरे फ्रेंड का अब्बू तो ये कहता है, लेकिन खून जलाएं, तरबियत बहुत मुश्किल है। और यही काम किए बगैर तालीम का भी फायदा नहीं होता। यकीन करें ये सिर्फ 2 घंटे का पारा होता, बल्कि 2.25 घंटे का, अगर इसमें से तरबियत और तस्किया के नुक्ते आपके निकाल दें, सिर्फ 2.25 घंटे, 1.5 घंटे में पूरा तर्जमा एक्सीलेंटली बंदा प्रेजेंट कर सकता है, बल्कि आराम से करता है। लेकिन मैं और आप क्यों पढ़ रहे हैं ये कुरान? तस्किया हो जाए, तरबियत। कईयों ने तो पूरा साल सिर्फ इसी दौरे कुरान पर ही देखिएगा भरोसा करना है, अगले साल जब होगा इंशाल्लाह फिर आएंगे। होते हैं कई मजबूर हालात, ऐसे होते हैं, आपने मैंने ऐसा मजबूर नहीं होना, क्योंकि तस्किया का जो काम है ना ये मुसलसल काम है, हर वक्त बार बार करना आता है। एक दफा सफाई कर लें तो क्या घर हमेशा के लिए साफ हो जाता है? नहीं होता। तो यही मेरा आपका है, रहेगा बचपन की पड़ी हुई आदतें बदलेंगी टाइम से, चलने का, खाने का, पीने का। हमने 25-30 साल से तो सिर्फ दुनिया निभानी सीखी है ना, तो आज हम 28वां पारा पढ़ते हुए दीन निभाना कैसे सीखें? फिर ताने मिलेंगे, ये दीन पढ़ के औरतें बदतमीज हो जाती हैं, इनको इनकी जुबान खुल जाती है, या किसे बोलती हैं, या हक मांगती हैं। सब्र कर लीजिए, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये नहीं कह दिया कि दीन के नाम पे अब रिश्तों को काट के क्या करो, नहीं, नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो। जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, वो तुम्हें जिस बात से रोकता है। अब नोट कर लें, खुद ही 1, 2, 3 करके आ रही है, क्या करने का हुक्म देता है अल्लाह और किस चीज से रोकता है। फरमाया, वो जिस चीज से तुम्हें रोकता है वो तो ये है कि तुम इन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है। नो कॉम्प्रोमाइज एट रिलीजन एट एनी कॉस्ट, नहीं, दीन के मामले में मैंने नहीं माननी, चाहे मेरे सामने मेरी बीवी खड़ी हो, चाहे मेरा शौहर खड़ा हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, मैंने नहीं मानी। ये सबक पढ़ा था सहाबा ने, बस, तो उनके दर्जे बुलंद होते गए। आज 7 साल तक हम एक मदरसे में पढ़ते हैं बस दफा, लेकिन ये बात नहीं समझ आती, फिर मजबूर किए जाते हैं। वल्लाही मैंने जब दीन के नाम पे लोग, यानी दीनदार हैं, आप भी दीनदार हैं, दूसरा घर भी दीनदार है, और शादी के मौके पे अगर आप दोनों मजबूर हो गए हैं तो फिर सॉरी, आपने ये नहीं पढ़ा। हम कहते हैं शादी कर लो जैसी करनी है, बाद में उमरा करके आएंगे, गुनाह बख्शवा लेंगे। आम लोगों के लिए ये बात चल जाएगी, वो बोले हैं मैं अपने बच्चे की शादी पे ऐसा करूंगी तो ये कभी नहीं होगा। अल्लाह कहेगा तुमने दूसरों को बेवकूफ बनाना था, जब इस दीन पे अमल हो ही नहीं सकता तो तुमने इतना क्यों वक्त लगाया लोगों को बताओ। कह दो एक सीधी सी बात है, ये सारा कुरान बहुत अच्छा कहता है पर आज के दौर में अमल नहीं हो सकता, खुदा हाफिज। क्या जरूरत है 30, 32, 34 दिन तक इस कुरान को पढ़ने की? हम दीनदारों ने आज लोगों को दीन से दूर किया है। मैं अपने ऊपर इल्जाम लेने को तैयार हूं अगर मैंने कभी किसी की खुशी के लिए कहा हाँ मुझे पता आपकी मजबूरी है। आज का दौर है, ये बेटे की खुशी, यकीन कर वही काम लोग कर रहे होते हैं शादियों में जो आम लोग करते हैं, सिर्फ नाम बदल जाता है, हम नहीं बच्चों की खुशी। ये बच्चों की खुशी करने दें, आप जाइए, आपको कौन रोकता है, आप उधर रहे, कोई कर सकती है ये माँ आज के दौर में कि बेटा मैं तेरी शादी में नहीं जाऊंगी अगर वहां नाफरमानी होगी, ए बेटी तुझे मैं नहीं सलाम प्यार करूंगी अगर तेरा हाल हुलिया ऐसा हुआ उस वक्त जब अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया, तो फिर बताइए कि जुरत है आज? ये है जी पारा सारा रिश्तों का जिहाद, दीन और दुनिया के क्लैश के दौरान किसको पकड़ती हूँ, किसको लेती हूँ, किसको नहीं छोड़ती, और ये सबसे मुश्किल है। देखिए एक हाथ में आप एक चीज पकड़ लेते हैं आसान है, दोनों हाथों में चीज पकड़नी बहुत मुश्किल होती है, फिर चलना भी धोबर होता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि वो तो कि तुम इन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे खराज में एक दूसरे की मदद की, इनसे जो लोग दोस्ती करें वही जालिम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो इनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लिया करो और इनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो इन्हें कुफार की तरफ वापिस कर दो, ना वो कुफार के लिए हलाल है ना कुफार इनके लिए हलाल है। शौहर बीवी में से जब एक इस्लाम पे आ जाए तो वो दूसरे के लिए हलाल नहीं, इनके काफिर शौहरों ने जो मेहर इनको दिए थे वो इनको वापस फेर दो, और इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई हर्ज नहीं, तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनके मेहर इनको अदा करो और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रोके रहो। जो मेहर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापिस मांग लो, और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे इन्हें वापिस मांग लें। ये अल्लाह का हुक्म है और वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है और वो अलीम और हकीम है। और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के मेहरों में से कुछ तुम्हें कुफार से वापस ना मिले और फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां उधर रह गई हैं इनको इतनी रकम दे दो कि जो इनके दिए हुए मेहरों के बराबर हो, और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। मजमून तो समझ आ ही रहा है ना। यहां देखिए, हक मेहर उसका दे दो, इसके पीछे क्या खूबसूरत अहकामात हैं। और मैं जब इन आयतों पर आती हूँ मैं कहती हूँ, अल्लाह तेरे से ज्यादा कोई ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स और इकोनॉमिकल राइट्स नहीं दे सकता। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक भी जमा हो जाएं, ये जो कानून है, कहेंगे तो ईद के किसी दिन जब बाद में पूछिएगा ये क्या बात थी तो सुनाऊंगी आपको कि किसको किसने किसने किसको किसका देना, यानी जुल्म किसी पे नहीं होना। एक मर्द की बीवी काफिर हो गई, अब उसने दोबारा शादी करनी, कहां से पैसे लेगा? वो काफिर बीवी जो उधर गई है उनसे पैसे मांगे जाएंगे कि दो, मैंने दूसरी शादी करनी है, मुझे हक चाहिए। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, अल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये हमारे दीन की खूबसूरती है। ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आए और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, ये है इस वजह से सूरत का नाम मुमतहिना, बैत ली जाती थी। और याद रखिए, बैत लेने का हक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इमाम वक्त और हाकिम एक साथ होता है। आज के दौर में किसी की बैत नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कल ये दौर फिर आ जाए और अल्लाह करे वो वक्त दोबारा आए। क्या था अहद? इस बात का अहद करेंगी कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज का शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे बुख्तान घड़ कर ना लाएंगी और किसी अमरे मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी। तो इनसे बैत ले लो और इनके हक में अल्लाह से दुआए मगफरत करो, यकीनन अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ये बैत क्या सिखाती है मुझे आपको आज के दौर में, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहले से अच्छी तरह पढ़ लो। देखिए, हमारा दीन डिसिप्लिन का दीन है, ये सारा कुछ पहले कहा जा रहा है, फिर अशहदुल्लाह वशहदुअन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाते थे। अब जिस मुसलमान औरत या मर्द ने ये सब कुछ पहले कहा होगा, शिर्क से लेके चोरी, जिना, औलाद का कत्ल और बोहतान, क्या फिर वो बाद में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगी या बस नाम की मुसलमान होगी? ये है इस्लाम, कि इस्लाम पाबंदियों का नाम है। यस, पाबंदियां होंगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, माननी पड़ेंगी, कभी चाहते हो तो नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। क्यों? कि यही तो प्लेजिंग है। आज हम इन बातों से भाग जाते हैं। कितना दर्द है हमारे दिल में दीन का, कितना कुछ हम करना चाहते हैं। आप कहेंगे हम कौन है, आप और हम जो अंसारुल्लाह बन के बैठे हैं? नहीं, सॉरी, ये मैं उन हम की बात करती हूं जो कहीं भी नहीं जाते, करना चाहते, ये पाबंदियां नहीं बर्दाश्त होती। वो अकेले काम करके खुश, वो अपने उन पे खुश, खुद अपनी जात में एक इदारा खुश, किसी को ना पूछना पड़े ना बताना ना पड़े, ये नहीं मैं कर सकता। अगर सहाबा ने इस तरीके से अपने दीन को फैलाया होता तो ये 10 साल में इतनी दूर तक इस्लाम ना पहुंचता। अल्लाह हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाला बना दे। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया, मग़दूबिन अलैहिम से दोस्तियां ना करो। जो आखिरत से इस तरह मायूस है जिस तरह कब्रों में पड़े काफिर मायूस हैं, तो क्या मशवरा है अल्लाह ताला का? और आज के मुसलमान किधर भाग भाग के जाते हैं? अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, तिलावत सुनते हैं।
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.